तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। हम सबके बीच में उपस्थित हैं आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई जी। हम सभी बहुत प्यार से, हंसते हुए चेहरे से और रूहानियत से, निस्वार्थ प्यार से, एक हाथ की ताली से आज की सभा में आपका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपने 72 से बाबा को पहचाना और 78 से आपने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। इतना ही नहीं, आपका वो भाग्य है जो विशेष करके बाबा के इस पवित्र भूमि पर पांडव भवन में रहने का और सेवा करने का मौका मिला। हमें याद है जब हम छोटे थे तो जब भी यहाँ से रास्ते से आते जाते और रामनाथ भाई जी को देखा तो तुरंत टॉली याद आती है, और टॉली याद आते ही जब नजदीक जाते हैं तो सबसे पहले रूहानी दृष्टि देते हुए हम एक सवाल जरूर पूछेंगे, आज बाबा ने क्या कहा, और उसके बाद जब पॉइंट सुनाएंगे तब प्यार भरी दृष्टि के साथ साथ वह टॉली हमें प्राप्त होती है। तो बहुत बड़ी विशेषता है कि बाबा के यज्ञ का प्रभु प्रसाद, हरिक आत्माएं जब मधुबन से जाती है वो प्रसाद लेकर के जाती हैं, और वह बांटने की सेवा विशेष बाबा ने आपको दी थी, और साथ साथ अभी भी वर्तमान समय पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, अलग अलग सभी स्थानों पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश विदेश में आपके गहन राज्यों के अभ्यास के अनुभव के द्वारा आप क्लासेस और भट्टियां कराने के लिए आप अपनी सेवाएं देने के लिए जा रहे हैं, और रिलीजियस विंग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। आज का हमारा विषय है समर्थ स्थिति। हम सुनेंगे भ्राता आदरणीय रामनाथ भाई जी को।
ओम शांति। बहन जी को बचपन के दिन याद आ गए, और आप भी बताओ आज बाबा ने विशेष धारणा करने के लिए, क्योंकि बाबा के मुरली के अंदर चार सब्जेक्ट होते हैं कि औरों की सेवा भी कैसी करनी चाहिए, श्रीमत क्या है, योग कैसे करना चाहिए, बाबा को याद कैसे करना चाहिए, और धारणा, स्वयं में धारणा क्या होनी चाहिए। तो ऐसे एक पॉइंट बताओ जो आपको आज अच्छा लगा कि मेरे लिए बाबा ने ये कहा, ऐसे एक अच्छे पॉइंट्स बताओ। हाँ, बाबा ने कहा बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है सुनते हैं और अनसुना करते हैं, है ना, सुनने के बाद अनसुना, और एक क्या करते हैं, सुनने के बाद विचार सागर मंथन करते हैं। खुशबूदार सूरत वाले खुशबूदार फूल है। सदा अच्छा, और हाँ, बाबा को बाबा एक सेकंड भी सर्विस के बिगड़ नहीं रहता है, सर्विसेबल बच्चों को बाबा देख याद भी करता है और देखता भी रहता है, कहीं भी रहो यहाँ ही रहने की जरूरत नहीं है। तो सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद भी करता है और देखता भी है। हाँ, और अच्छा, आज बाबा ने विशेष कहा कि आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कौन है वो मास्टर सर्वशक्तिवान? किसके बच्चे हो? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने सर्वशक्तियां तो दिया, बाप की अमानत बच्चों की है, जन्मते ही वारिस अधिकारी हो गया बाप की अमानत की। तो सर्वशक्तियां हर परिस्थिति में यूज करो, है ना। जैसे आज टॉपिक भी रखा समर्थ स्थिति और व्यर्थ। अगर आप यहां से बाहर गए, जहार सबने चप्पल बाहर छोड़ा है, बाहर छोड़ा ना, पहन के तो नहीं बैठे ना, हाँ देख लो पाव को भूल करके पहन के बैठे हो। नहीं, कभी क्या होता है ना, योग्य लगता है, भूल ही गए चप्पल निकालना, ऐसे पहन के आके बैठे, ऐसा तो नहीं, बाहर छोड़ा है। अगर जाते समय किसी ने आपका चप्पल पहन लिया, आप देखते मैंने इधर चप्पल छोड़ा था ही नहीं, तो आपके मन में क्या होगा? विचार तो आएगा ना, देखो बाबा के बच्चे बाबा के घर में आकर के भी ऐसे करते हैं, चप्पल एक दूसरे का पहन लेते हैं, मन में चलेगा ना व्यर्थ, है ना। तो समर्थ स्थिति क्या है फिर, है ना, व्यर्थ तो चलेगा। अगर देखा भी आपने किसी को आपका चप्पल पहनते हुए, तो क्या निकलेगा मन में, मुख से कुछ निकलेगा, अच्छा अच्छा शब्द निकलेगा, कोई अर्जन आपका कल्याण हो, हाँ ऐसे कहेंगे नहीं। तो ये व्यक्ति क्या, एक एक चीज में देख लो आप, साधारण चीज है ये। तो बाबा ने कहा, अगर सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो आपके पास सर्वशक्तियां है, समझ है कि ये भी कौन, ये भी कौन, ये भी कौन। तो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो, कितना खराब व्यक्ति भी हो, लेकिन उस शरीर के अंदर कौन सी आत्मा है? रावण का आत्मा तो नहीं है, शिव बाबा के बच्चे कोई भी हो, कितना अधम ते अधम खराब भी हो, कितना गुस्सा करता भी हो, कितना सुंदर भी हो, अच्छा भी हो, तो भी भगवान का ही बच्चा है ना, ये समझ दी है। अगर आपने ज्ञान समझा है, माना, एक पहली चीज है, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई हर्जा नहीं। बाबा के हमारे भाई ने बहन जी ने पहन लिया चप्पल, कोई हर्जा नहीं, बाबा मुझे नया दे देगा। अगर आपके अंदर ये स्मृति आती है, तब कहेंगे सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे समर्थ बच्चे हैं, है ना। तो समर्थ माने क्या, आपके अंदर वो शक्ति है, कुछ होता हर सेकंड हर परिस्थिति में, हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना कुछ होता है, हम चाहते एक और होता कुछ है, तो भी उस परिस्थिति में भी हमारे मन के अंदर काटा जो है इधर उधर नहीं होता है, स्थिर रहता है, कोई हर्जा नहीं। आप दौड़ दौड़ के मेहनत करके ट्रेन में गए, ट्रेन में जाना है, नजदीक पहुंचते पर तो ट्रेन चली गई, अरे क्या हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, बहुत विचार चलेंगे, हाँ ट्रेन चलेगी, क्या होगा, कोई हर्जा नहीं, जाने दो, आज नहीं कल जाएंगे, दूसरे ट्रेन पर जाएंगे, क्या होने वाला है, ये कौन किसकी अवस्था है, जिसके अंदर समझ है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर आपको चलते फिरते किसी ने कुछ बहुत गुस्सा किया, आपके कमरे में कोई भाई रहता है, उसने देखा मेरा मोबाइल गया और कुछ गुम हो गया, और आप दो ही है, देखते ही आपको एकदम बोलने लग गया, तो आप क्या करेंगे, परिस्थिति ऐसी है, कुछ भी आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी शक्ति का प्रयोग, संभालो, सहन करो, पति है, बच्चे है घर में, बहुत बोलते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, सुनते नहीं है, आप भी बोलते रहो तो चलेगा, सामने वाला चुप रहेगा, वो भी बोलेगा, तो क्या होगा, घर में शांति होगी, तो कहां से शांति आएंगे, ऊपर से आएंगे नहीं, शांति के बच्चे, शांति सर्वशक्तिवान शांति के सागर के बच्चे हो, अगर आपके पास ही नहीं तो दुनिया वाले के पास होंगी। तो ये स्थिति है। अब ये क्यों नहीं है, अभी भी आप देख लो, जितने भाई बहन है बाबा के बच्चे इधर बैठे हैं, आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी किसी ने गुस्सा नहीं किया, वैसे होता हाथ उठाओ, सबने कहा वराच्छा में डायमंड मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, तो वराच्छा वाले हीरे बच्चे होंगे ना, वराच्छा का उसको बड़ा अच्छा, हाँ बड़े अच्छे बच्चे कहां मिलेंगे बाबा को, वराच्छा मिलेंगे। अभी बड़े अच्छे कौन है, वो डायमंड जैसे कौन है, हाँ
सोने से भी नंबर वन हीरा है ना, तो बाबा ने कहा आपकी अवस्था हीरे जैसी है, तो हीरे कहाँ मिलते हैं? तो अभी बताओ हीरा कौन है इधर? एक भी नहीं, एक तो है, होगा देख लो, सोच लो, आज से एक महीने के अंदर, एक साल के लिए नहीं, एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसा नहीं। फिर मेरे ख्याल से बहन जी को अभी कहना पड़ेगा, अगले साल भट्टी में लाया था, अगले साल लेके नहीं आना अभी। हाँ, अगले एक साल पहले लाया था। तो भट्टी माना क्या है? बाबा ने कल भी कहा कि परिवर्तन की शक्ति। कष्ट है, बहुत दर्द है, बहुत दुख है, समस्या है, कष्ट है, उसको भी परिवर्तन की शक्ति से क्या करो, कहा कल सुना है तो स्लोगन में, तो क्या करो उसको संतुष्ट, उसमें भी संतुष्ट। तो नहीं तो अगर हमने हमारे और भक्ति वाले में लोगों में क्या अंतर है? वो मैंने दो दिन से अभी देख रहा था, मैं आप सबको देख रहा था, देख लो बाबा के कमरे में देखना कि अभी देखो बहन जी ने आज आपको समय दिया ना, चारों धाम की यात्रा करने के लिए समय दिया है ना, अलग रखा है। तो ये भक्ति वाला शब्द है, चारों धाम की यात्रा, जो बाहर आते हैं घूमने के लिए आते हैं, वो चारों धाम की यात्रा कर चले गए। आप भक्ति के बच्चे हो कि भगवान के बच्चे हो? ज्ञानी तो आत्मा हो। तो मैं देखता हूं अमृत वेले बैठकर बाबा से शक्ति लेनी है, कहीं भी बैठो, तीन चार स्थान है, छोटे हॉल में आते हैं, दो मिनट बैठते हैं चले जाते हैं, एक आया दूसरा गया, एक बैठा दूसरा गया। तो एक जगह बैठो, अमृत वेला बाबा से शक्ति लेने की है। चार धाम में यात्रा अमृत वेला नहीं, वो अभी अभी किया आपने, 10 बजे किया, समय रखा है देखने के लिए। लेकिन अमृत वेला किसके लिए? योग करने वाले बहन जी या कोई भी बैठे, वो उठते बैठते रहते हैं, एक जगह बैठो, खाना खाने बैठते हो तो बीच बीच में उठते हैं, पेट भर के खाना खा के उठेंगे ना। योग आत्मा को शक्ति देता है, खाना है। मुरली क्लास में 2 मिनट बैठो फिर 2 मिनट उठ के जाते हो, नहीं, ये शुभ विचार, भोजन है आत्मा के लिए। उस समय पेट भर के एक जगह पर स्थिर होके बैठेंगे ना। तो अमृत वेले योग में बैठे, कहीं बैठे, इधर आपका स्थान है, इधर बैठो, छोटे हॉल में बैठो, शांति स्तंभ में बैठो, अमृत वेला तपस्या, चलते फिरते याद, याद योग और तपस्या, चलते फिरते बाबा ने कहा 8 घंटा याद कर सकते हो आप, बैठ के नहीं, 1 मिनट बैठो उठो। आज किसने क्या बाबा के कमरे में बैठे थे, वो छोटे हॉल में आए थे, आप में से कोई आए थे इधर जो बैठे हैं? तो बैठे बाबा कमरे, आप आए थे, बैठे, क्या किया आपने उधर आके, क्या क्या देखा? भक्ति में जैसे मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने जाते हो, देखते हो बाबा ओम शांति, उठ के चले गए। तो योग लगाया नहीं, आए बैठे, दर्शन करके गए, योग किया, तपस्या किया नहीं किया, फिर इधर आ गए। तो एक ही जगह बैठो ना, यहां बैठो। तो इसलिए कहा कि तपस्या, याद क्या है, योग क्या है, उसके कारण हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारी चलन भक्ति मार्ग जैसे हो गया है। बहुत ज्ञान सुनना लेकिन यूज करना नहीं है, है ना। बहुत खाना खाया और हजम ही नहीं किया तो क्या फायदा, और बीमारी होंगी। तो खाना खाओ, नहीं ऐसा नहीं, बहुत अच्छा मधुबन में मिलता है, बहुत खा लो, नहीं, जितना आपको चाहिए, जितना आप हजम कर सकते हो। 36 प्रकार का बाबा भोजन देता है। आपने बाबा को देखा, बाबा जब आता है शांतिवन में, देखते हो ना बाबा कैसे खाता है, बाबा को एक एक देखो कैसे मुंह हिलता भी है, देखते हो, देखो हर चीज देखो, क्योंकि फॉलो बाप दादा को करना, भगवान के बच्चे हम, हमारे माँ बाप कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं, तो ये आचरण चाहिए, तब हम मनुष्य से देवता बनेंगे। इसलिए बहन जी को इसी साल 2 साल हो गया अभी कि बाबा के बच्चे सेंटर में योग करते हैं। क्या होता है, सवेरे मुरली में आते हो, 7 बजे ऑफिस में जाना, देखते रहते, अरे 7 बज गए, तो न मुरली अंदर जाती है। हाँ, पर इस संसार में रहते हुए गृहस्थी, हम सन्यासी नहीं है, ग्रस्त में रहना है, बच्चे को छोड़ के माता जी आई, उनको समय पर पहुंचना चाहिए, करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन यहां आने के बाद आपको ना खाना बनाना है, ना कपड़े धोना है, ना कुछ भी करना नहीं, तो फ्री हो करके बाबा कहते हैं बच्चे बैठ के तपस्या करो, है ना। अभी अगले साल आना, 1 साल के लिए जो शक्ति चाहिए वो भरना पड़ेगा ना, नहीं भरेंगे संसार में जाते ही क्या होगा, फिर से वही हो गया। तो इसलिए बाबा बच्चों को समय देता है, बच्चा ऐसे परिस्थिति में यहां आओ और बैठ करके तपस्या करो, घर में नहीं कर सकते, संसार में नहीं कर सकते, गर्मी है, बरसात है, यहां ऐसे स्थान है, शांत शीतल वातावरण है ना, तो ऐसी तपस्या करना चाहिए। तो आज तक नहीं किया, बैठे चले गए है ना, अभी करो, इतना सहज है। दो काम करनी है, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा तीन काम करना है। अगर आपकी अवस्था एक रस होना चाहिए, एक रस मना कोई गुस्सा कर रहा है, कोई घर में शरीर छोड़ता है, कोई जन्मते ही लंगड़ा अंधा हो गया, किसी की शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, ये सारे कलयुग में परिस्थिति आएंगी, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, बिना कुछ किए हुए बीमार हो गया, पैसे नहीं लाखों रुपया खर्च करना पड़ता, ये सारी समस्या आएंगी, तब उसका नाम है कलयुग है ना। तो कलयुग में हमने बहुत जन्मों से किए हुए पाप अलग अलग प्रकार से भोगना पड़ता है। तो आप कहेंगे कैसे बताते हो आप, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देवात्मा, कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा है, वराचा वाले से पुण्य आत्मा है कह सकते हो। हाँ, तब कहते मुखड़ा देख ले प्राणी, कि जब रात को सोते हो अगर पांच विकारों के स्वप्न आते हैं, कहां से आते हो, कहीं से नहीं आते हैं, कोई सामने नहीं, आके बंद किए हुए सोए हुए हो, आत्मा ने इस शरीर में, ऐसे शरीर में रहकर जो जो किया हुआ है वो सब अंदर भरा हुआ है। अंदर क्या भरा हुआ है, तो वो मुखड़ा देख लो, अगर पांच विकारों के स्वप्न आते हैं, अंदर पाप भरा हुआ है। उस पाप को मिटाने के तीन तरीके हैं। और हम हॉस्पिटल में क्यों जाते हो आप, डॉक्टर का दर्शन करने जाते हो, कैसे डॉक्टर है देख लो, हाँ दर्शन करने जाते हो, नहीं तो हॉस्पिटल में क्यों जाते हो, कि शरीर के अंदर कोई बीमारी है, दर्द सहन नहीं कर सकते, बीमारी से ठीक होने के लिए जाते हैं ना, ऐसे दवाई लेकर ट्राई करके जाते हैं करने के लिए, ऐसे तो नहीं है ना, बीमारी से ठीक होने के लिए। ये रूहानी हॉस्पिटल है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसलिए आए है, आत्मा की बीमारी को मिटाने के लिए आई है, कि भगवान से प्रेम करने आए, भगवान से प्यार करने आए, वो किया आधा कलप, किया आधा कलप, गला भी काट दिया है ना, कितना व्रत किया, कितनी मेहनत किया, तो भगवान से प्यार था, अभी प्यार नहीं, अभी तपस्या चाहिए। तब बाबा ने कहा बच्चे आपका 100% बाप से प्यार है, लेकिन तपस्या चाहिए, विकर्म विनाश करने के बिगर सत्युग में जाने की टिकट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गुस्सा रह गया तो चलेगा, हाँ चलेगा, तृप्ति बहन ले जाएंगी, कहते हमारे बहन जी हमको सब जगह ले जाएंगे, ऐसा चलेगा, थोड़ा सा गुस्सा रह गया, सत्युग का टिकट मिलेगा, तो मीन वरक्षा वाले तो जाना नहीं चाहते ऐसा लगता सत्युग में, हाँ जाना चाहते हो, नहीं और थोड़ा दिन चाहिए, ऐसा बाबा ने तो अभी कहा बच्चे अचानक परिवर्तन होगा, तो बताओ वरक्षा वाला सत्युग में जाना चाहता है कि वरक्षा में थोड़ा दिन रहना चाहते हो, चाहते हो, तो वे गुस्सा लेके जाएंगे माता जी, फिर कहां छोड़ देंगे आप गुस्सा, कब छोड़ेंगे, अभी आप बताओ, अभी बहन जी को बताओ, नेक्स्ट ईयर जो भी मधुबन में भट्टी करने आएगा तो बहन जी पूछे गुस्सा छोड़े वाले, जिसने छोड़ा है उसी को बुलाना पड़ेगा ना, कि गुस्सा लेके आएंगे, अभी छोड़ के जाएंगे, अभी यहां से जाते समय तो बाबा को कुछ दान देंगे ना, कैसे जाएंगे खाली, बाबा ने जो पालना दिया इतना आपको, तो बाबा को कुछ दान देके जाएंगे, दक्षिणा तो देंगे ना, तो क्या दक्षिणा देंगे, हाँ तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये क्रोध स्वयं को भी जलाता है औरों को भी जलाता है ना, तो एक क्रोध छोड़ के जाओ, बाकी चार विकार अपने आप बाबा लेगा। बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम रखो, हजार कदम बाबा आपको मदद करेगा। आप कहेंगे कि भाई जी हम तो गुस्सा छोड़ना चाहते हैं, कैसे छोड़े, हाँ उसकी विधि बताता हूं। ऐसे नहीं सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द जाओ, सिर दर्द जाओ, सिर दर्द जाओ, 100 दफा कहो चला जाएगा, जाएगा नहीं, गोली लेनी पड़ती है ना, सिरदर्द की दवाई है, वो गोली लेते हो तो सिरदर्द जाता है। ऐसे यहां भी ये क्रोध अपने आप नहीं जाएगा, उसकी तीन विधियां है। तो करना चाहते हो कि सुनना चाहते हो, पक्का, हाँ चक्का करना चाहते हो, अभी अब 2-3 दिन है और भी आपके पास, ठीक है, दवाई लेके, अगर ये दवाई काम नहीं करती बता देना हमको, ठीक है, ये दवाई काम नहीं करती, यहाँ लेके जाना, वापस लेके नहीं जाना दवाई, यहाँ ही खाना। एक सबसे सिंपल कि चलते फिरते कोई भी दिखाई दिया, कोई भी हो, यहाँ बाबा के बच्चे काम करने वाले, कोई भी दिखाई देते ही शिव बाबा मन के अंदर, शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। किसी को देखते श्वासोश्वास बाबा को याद, भगवान को याद करो, कहते कैसे करेंगे आप, आत्मा के श्वास माना संकल्प। किसी को देखते संकल्प आया, कोई भी किसी पर नजर गई, शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, शिव बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, शिव बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ। किसी पर नजर जाती मन में अगर ये शुभ संकल्प आता है, श्रेष्ठ संकल्प आता है, शुभ भावना आता है, तो मन आपका स्वच्छ है, मन जीत जगत जीत कहा। आंखों के सामने माताजी आएंगे, अरे माताजी ने चश्मा क्यों पहना है, अगर खाली मन है देह समझते हो, माताजी का चश्मा ही दिखा, माताजी ने बैच क्यों लगाया, कहां से आई, ये विचार आएगा तो समझ लेना हम देह समझ के चल रहे हैं, तो तुरंत समझ, अरे बाबा ने कल कहा था आत्मा को देखो, आत्मा दिखाई नहीं देती है, मन में संग पता है इस शरीर के अंदर आत्मा है, देखते ही आत्मा शुभ सोचता है, उसके अंदर शुभ संकल्प है। ये नंबर वन राजयोग है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्तियां है। नंबर वन याद योग क्या है, यहां देखते ही उस आपके मन में शुभ विचार, उसको शुभ भावना कहा, मन सा सेवा कहा, मन जीत, मन नहीं तो गलत सोचता, मन चंचल है, मन का काम है, आदत पड़ी है, माताजी को देखते हम पिताजी तो नहीं कहेंगे, माताजी कहेंगे, है ना, भूल से भी पिताजी नहीं कहेंगे, हाँ फिर कौन सी माताजी, शिव बाबा आपके बच्चे हैं, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। ये चेकिंग करो, चलते फिरते किसी पर दृष्टि गई, मेरे मन में क्या विचार आया, हाँ गलत आया, कोई अर्जा नहीं, समझाओ, मन बच्चा है, बच्चे को मारो नहीं, समझाओ, कौन समझाएगा, कौन समझाएगा, माँ बच्चों को समझाएंगे, टीचर स्टूडेंट को समझाएंगे, आप मन को कौन समझाएगा, आत्मा, आत्मा अलग और मन अलग है, दो हो गए ना, मन को कौन समझाएगा, हाँ बुद्धि है, ये दुनिया में नहीं है, तो बाबा आके हरेक को तीसरा नेत्र देता है। अब बुद्धि, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला कहता अच्छा है पी लो, गुस्सा करने वाला नहीं, उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मैंने गुस्सा किया, ये भी मन को समझाता है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं, स्वच्छ बुद्धि नहीं, वो गलत समझाएगा, समझ आ गया, तो बुद्धि के अंदर समझ चाहिए, कौन सी, जो रोज मुरली सुनते हो, एक मुरली के पॉइंट अगर आपके बुद्धि में है, याद तुरंत आता है, मन में किसी को देखते गलत विचार आता है, तुरंत बुद्धि कहेंगे आज बाबा ने कहा बच्चे औरों के प्रति शुभ सोचो, बुद्धि मन को समझाती है, समझ में आया, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान ठहरना चाहिए, ठहरता नहीं, याद ही नहीं रहती है, तो उसके लिए एक तरीका चाहिए। वो दूसरा तरीका क्या है कि एक काम करो, जब मुरली सुनते हो बहुत ध्यान से सुनते रहो, सुनते सुनते एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, आज ये बहुत अच्छी चीज है, ये पॉइंट मुझे आज ही करना चाहिए, वो लिख करके अपने जेब में रखना, डायरी में लिखा, ये डायरी जाके किचन कमरे में रख देंगे, कल क्लास में आते समय लेके आएंगे, फिर डायरी भरने के लिए लिखा नहीं, तो अपने अंदर एक मुरली के पॉइंट छोटे से कागज, डायरी में लिखो सारे पॉइंट चाहे तो, एक छोटा सा पॉइंट लिख के अपने जेब में रखना, क्यों सुनी हुई बात किसी को याद नहीं रहती, हमको भी याद नहीं रहती है, विधि है ये, ऐसे पांच तरीके हैं, आज सुनी हुई मुरली आप 50 साल तक भी याद रख सकते हो, तो उसकी तरीका है, अपने आप नहीं है, विधि है, और सदा नहीं, एक हफ्ता काम करना चाहिए बस, एक ही हफ्ता, अपने आप फिर आदत बन जाएंगे, एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा लिख करके जेब में रखो, माताएं डायरी में लिख के किचन में रख देना, ठीक है, सारा दिन किचन में रहते हो, तो क्या करो, जब यहां से गए मुरली क्लास के बाद नाश्ता करते हो, दो हाथ दिया है बाबा ने, ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ जेब में डालो, बाबा ने क्या सुनाया था, पढ़ो रखो, ये भोजन है। मन को शुभ विचार दे दो। हम दो है, शरीर और आत्मा, शरीर को भी खिलाओ आत्मा को भी खिलाओ एक साथ। उसके बाद कर्म करो। दिन में एक दफा खाना खाते हो तो दिन में खाना आते ही और एक दफा, रात सवेरे खाया था रात को क्यों खा रहे हो, पेट तो एक ही है, सवेरे खाया था रात को क्यों खा रहे हो, भूख लगती है तो आत्मा को भी भूख लगती है, तब गुस्सा करता है शाम को। तो रात को एक दफा खाना खाने बैठते ही ढूंढने जाना नहीं, आपके जेब में होना चाहिए, तुरंत निकाल के पढ़ो। हो सकता है ये काम कि कठिन है, कर सकेंगे? डायरी किचन में रखो, खाना खाने से बैठने से पहले पढ़ो एक ही पॉइंट, दो भी नहीं, और खाना खाने बैठो। हो सकता है? ये क्रोध को मिटाने की गोली है, ये मुरली के पॉइंट, ये संजीवनी बूटी है। तो गुस्सा क्यों आ रहा है, बेहोशी में आता है, ये आत्मा है समझते नहीं है, ये मेरी युगल है, मेरी ये है, ये मेरा खरा दोस्त दुश्मन है, ये समझ के गुस्सा आता है, बेहोश, होश नहीं है। तो बेहोश को होश में कौन लाएगा, संजीवनी बूटी सुंगाते हैं, बेहोश होश में आता है। तो मुरली के पॉइंट अगर बार बार अपने को तीन दफा कम से कम पढ़ाते हो तो सारे दिन में आप होश में रहेंगे। समझ में आया? उसको अगर गुस्से को मिटाना चाहते हो ये गोली रोज तीन दफा खानी चाहिए। खाएंगे कि भूल जाएंगे? हाँ, तब देखला आप एक ही हफ्ता, तब देखो क्रोध कैसे चला जाता, अपने आप चला जाएगा। हर चीज की दवा है। अगर आप समझते और भी जल्दी करना चाहते हो तो बाबा ने कहा ज्ञान धन है, धन दान करो, तो उसकी विधि बताए। अगर आज की मुरली के पॉइंट एक व्यक्ति को आप सुनाते हो, एक जन्म के लिए आप धनवान बनेंगे। अगर किसी को एक लाख रुपया दे दो, खाया पिया खत्म, जाते समय ले जाएगा नहीं, अगले जन्म में कुछ मिलेगा नहीं, एक मुरली के पॉइंट सुनाओ तो वो आत्मा चिंतन करता, अनुभव करता है, उसके अंदर धारणा हो जाती है, आत्मा जाते समय ले जाती है। ये धन है, ये धन भविष्य के लिए भी जाता है। तब बाबा ने कहा बच्चे धनवान बनना चाहते हो, ज्ञान धन को अविनाशी खजाने बनाओ। कैसे बनाएंगे? अविनाशी संस्कार बनाओ। आज एक ही पॉइंट, जितने लोग मिलते हैं बात करो जरूर, लेकिन ज्ञान के अलावा इधर उधर की बात नहीं करो, कोई फायदा नहीं। हाँ, माताजी से मिलो, माताजी कैसे हो, ओम शांति। देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, ओम शांति करके छोड़ना नहीं, ओम शांति के बाद और कुछ दे दो। सुना? एक ना, पहले ओम शांति करके छोड़ देते थे, अभी छोड़ना नहीं, ओम शांति के बाद कुछ देना। क्या देंगे? शुभ विचार दे दो, शुभ समाचार दे दो। आज बाबा ने ये कहा, देखो आपके अंदर भी रिकॉर्ड हो गया, संकल्प भी शुद्ध हो गया, संस्कार भी बन गया, मुख से वर्णन भी किया, और उनका भी उद्धार हो गया, उनको भी ज्ञान धन मिल गया। अगर एक व्यक्ति को सुनाते हो आप, एक जन्म के लिए आप धन, एक का पदम गुना। कितना जन्मों के लिए धनवान बनना चाहते हो? आपके हाथ में है, पूछ लो। आज तक इतना दिन में थे, किसी को मुरली के पॉइंट सुनाया नहीं, लिखा रख दिया, कंजूस करते हो। हाँ, दान बाबा ने दिया, कंजूस भर के रखते हो, दान करो। सुना? बात करो जरूर, लेकिन मुरली के पॉइंट रोज सुनाना चाहिए। मंजूर? ये दो काम कर सकते हो, ऐसे पांच तरीका है, ज्यादा नहीं, दो काम करो, एक अपने जेब में, हाँ, और एक तीसरा करो कि आप माताजी कहते, भाई कहते, भाई जी मैं अकेला हूं, मेरे सामने सारा दिन में कोई नहीं मिलता है मुझको, मैं किसको दे दूं? हाँ, आजकल सबके पास मोबाइल है, कोई फोन करता है, बात करो, एक घंटा बात करो, संसार की बात करो, दुख के समाचार सुनाता है, वो जरूर सुनना पड़ता है, सुनो। सुनने के बाद अगर वो बाबा का बच्चा है तुरंत निकाल करके, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, उसने गलत बात सुनाया, काला दाग लग गया, तुरंत आपने साबुन है अच्छी पॉजिटिव दे दिया, ये साफ हो गया। कलयुग में होगा ऐसा, इसलिए तुरंत निकालो, तुरंत साफ करो। कर्म करते करते दाग पड़ता है, तुरंत साफ करो, छोड़ देंगे तो पक्का हो जाएगा, तुरंत मिटा दो। सुना? अगर मुरली के पॉइंट सुनाते हो तो साफ हो गया। और अज्ञानी कोई फोन करता है तो भी, वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो भी बाबा का ही बच्चा है, लेकिन उसको बाबा नहीं कहना। अगर कोई बात हो गई, बात बिजनेस की कुछ हो गया, भाई जी मैंने आज एक किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको बताऊं? हाँ बताओ। तो बताओ आज मैंने ये सुना था, पर ये पढ़ा था, न्यूज़पेपर के सुनाते ना, टीवी में ये समाचार आया, न्यूज़पेपर में ये आया, समाचार सुनाते हो। तो ऐसे करके आज के मुरली के पॉइंट आपके मुख से जितनी दफा निकलता है उतना आपके अंदर अविनाशी संस्कार बनते हैं ज्ञान के, ये सारे कलप आपकी प्राप्ति करेगा आपको। समझ में आया? तो ये क्रोध को मिटाने की दवा है। दो बात हो गई, एक चलते फिरते किसी को कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, मित्र हो दुश्मन हो, बहुत गुस्सा करता है भाई, बहुत परेशान करता है, कोई अर्चन है? हाँ करता है, उसका ड्रामा में पार्ट ऐसा है, क्या करेंगे आप और एक पत्थर मारेंगे? नहीं, उनका पार्ट है गुस्सा करना, परेशान करना, करने दो बाबा, यह आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको ठीक करेगा, आप ही करेगा, मैं कर नहीं सकता हूं। अगर देखो दो बच्चे आवाज करते हैं, बच्चे चुप बैठो, मानते नहीं, सुनते नहीं, मारेंगे उनको, माता जी को कहेंगे माता जी आप अपने बच्चों की संभाल करो, माँ बाप है ना, तो हम सबका माँ बाप है। बाबा कहता है मैं बच्चों की सेवा करने आया हूं, अगर कोई भी बच्चा कोई भी कुछ करता है बाबा को बताओ। तो देख लो इस साल बाबा ने तीन तरीके बताया, तो अगले साल मैंने यही 2013 में आया हो, 13-14 के अंदर लास्ट ईयर बाबा आया था, बाबा ने कहा था बच्चे जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी विघन हो, कोई भी परिस्थिति आए हुए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक विधि बताया, बच्चे अमृत वेले उठो, सीधा मधुबन में आ जाओ, लेकिन तन से नहीं मन से आओ, है ना, ये बताया था सबसे पहले। इस साल और एक चीज बताया, इस साल और दो बताया, इस साल एक बताया बच्चे कोई परिस्थिति कुछ भी बात आ जाए बाबा को सुनाना। फिर तीसरी दफा बाबा ने और एक बात बताया, दिसंबर 31 को एक मुरली पॉइंट सुनाया, बच्चे क्या करो, तीन बातें उसमें दिया, कोई भी बात है दिल में रखना नहीं, अचानक परिवर्तन हो जाएगा, तो किसको सुनाओ, दादियों से मिलो, दादी को सुनाओ, हाँ दादी नहीं मिलती है, बड़े निमित्त भाइयों को सुनाओ, नहीं मिलते हैं, जिसके ऊपर आपका विश्वास है तो उनको सुनाओ, खाली करो, अंदर रखना नहीं, कि अचानक परिवर्तन हुआ, जो अंदर रह गया 5000 साल के लिए ऐसे रहेगा, फिर किसके सामने निकालेंगे, अंदर कोई भी गलत चीज भरी हुई है, कुछ दुश्मनी है, कोई बात है, तो निकालो उसको, अंदर रखना नहीं, क्यों अचानक परिवर्तन होगा, तो लेके जाना नहीं, यहां ही खाली करना है सब कुछ। तो बाबा हर साल आके नई नई तरीका बताता है जो बच्चे सहज रूप से कर सके, ये पालना है, ये सिखाता है। इसलिए कहा सबसे पहले नंबर वन, चलते फिरते किसी पर नजर गई, जैसे भक्ति में आपने देखा राम 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 करते जाते, इधर उधर देखते भी जाते हैं, है ना, लेकिन ऐसे ही आप भी संसार में चलो, देखो अच्छी तरह से किसी को भी देखते ही मन में एक संकल्प रहे, वो मुख से करते हैं, आप मन से करो, बाबा इसको शांति की शक्ति दे दो, शुभ बाबा इसको सदा इसका कल्याण करो, तो आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, भगवान आपके साथ है, वो ऐसे आपके साथ नहीं रहता अपना घर छोड़ करके, बुद्धि में इसको कहते हैं दिल में दिला राम को रखो, दिल इस दिल में रखेंगे, बुद्धि का नाम है दिल, बुद्धि में याद है, किसी को देखते ही इनको दुआएं देना है, आज के मुरली के पॉइंट बुद्धि में याद है, तो किसी को सुनाएंगे क्या कहेंगे आप, आज बाबा ने ये कहा आपके दिल में दिला राम है, समझ में, अगर दिल में माता जी इधर बैठी मुरली सुनते सुनते भी, अरे बच्चों ने नाश्ता किया कि नहीं है, पति नाश्ता करके गया कि नहीं घर में, अगर यहां बैठ के याद करेंगे तो माता जी के दिल में कौन है, संसार है ना, तो यहां रहते हुए भी आप पूछो दिल कहां है, बुद्धि कहां लगी हुई है, संसार से लगी हुई है कि भगवान से लगी हुई है, तो अगर किसी को देखते ही भगवान आपके साथ है, आपके दिल में तुरंत कहेंगे आप आज बाबा ने ये कहा था, तब समझना हमारे दिल में बाबा है। तो बाबा अगर है, भगवान आपके साथ है, शिव बाबा है, उसका एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता है, ये दो तरीके बताया। अभी एक तरीका और चाहिए, इससे विकर्म विनाश नहीं होंगे, इससे विकर्म बनेंगे नहीं। लेकिन पहले किए हुए विकर्म है, पहले दिखाया आपको अंदर पाप भरा हुआ है, वो कैसे मिटेगा? उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे ज्वाला स्वरूप चाहिए। तो ज्वाला स्वरूप योग कैसे करते हो बताओ? अगर योग में बैठते हो तपस्या अमृत वेला कैसे योग करते हो? परंधाम जाते हो, देखा आपने परंधाम कैसा है, सफेद है कि लाल है कि काला है? परंधाम जाते हो, कौन जाता? आत्मा ही शरीर इधर रहता है, आत्मा ऊपर जाती है। फिर परंधाम जाके क्या करते हो बताओ? एमर्ज करते हो। अच्छा फिर और बताओ कैसे योग करते हो? अमृत वेले योग करते हो, बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप तपस्या चाहिए। तपस्या करते हैं ना, कैसे करते हो? अमृत वेला और शाम को दो समय है, 4 से 5, शाम को 6:30 से 7:30 योग करते हैं ना, तो बैठ के क्या करते हो, क्या योग करते हो बताओ भाई जी बताओ? हाँ चलो आज करेंगे ना, आज शाम को करो और देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं कि शिव बाबा ने कहा मैं कौन, मैं सोना देना नहीं आया, हीरा देना नहीं आया हूं, मैं किसके लिए आया हूं? पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। शिव बाबा का सबसे बड़ा काम क्या है? मैं पतित आत्मा को पावन कर 21 जन्मों के लिए वर्षा देने के लिए, स्वर्ग का सुख देने के लिए आया हूं। ऐसे नहीं देगा, पहले पावन करेगा, फिर घर ले जाएगा, फिर स्वर्ग में लेके आएगा। ऐसे अपने आप नहीं ले जाएगा, नहीं। तो अंदर पाप है, उसको मिटाना है तो उसकी विधि चाहिए। ऐसे कपड़े पानी में डालो तो दाग निकलता नहीं, दाग निकलना तो घिसना पड़ता है, समझ में आया? तो वो तपस्या चाहिए, वो भी मेहनत का काम नहीं, बहुत सहज है। गुजराती में आप उसको स्वाध्याय कहते हो, है ना, स्व का अध्ययन करो। सिर्फ बाबा से बात करते हो, कौन बात कर रहा था? शरीर समझ के, बाबा को शरीर है, आपका आवाज सुनाई देगा? तब बाबा कहते मेरे पास अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए बाबा तपस्या करने की विधि है। देखो भारत में कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, दो हाथ जोड़ते हैं, है ना। तो आत्मा को भी दो हाथ है, कौन से है दो हाथों? एक मन और एक बुद्धि। नहीं तो आप क्या करते, योग में बैठते हो, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, बाबा आप बहुत अच्छे हो, अरे आज इसको फोन करना था, ये कौन कर रहा है? सोच, दो आत्मा है, एक ही आत्मा है, तो योग में दूसरा व्यक्ति कैसे आ गया? हाँ, मन चिंतन करता है, बुद्धि खाली है, बुद्धि को और कोई बात, पुरानी बात याद आती है, तब कहते योग में योग लगता नहीं है, योग में व्यर्थ विचार चलते हैं। कहां से चलते हो? तो दो आत्मा तो नहीं है, एक ही आत्मा है, लेकिन दो शक्तियां, एक है मन और बुद्धि के अंदर पुरानी बातें याद आती है। तो बुद्धि, तब बाबा ने कहा बुद्धि मेरे से लगाओ। देखो बार बार बाबा मुरली कहता है मन बुद्धि मेरे से लगाओ, तब विकर्म विनाश होते हैं। संस्कार जो बनते हैं मन में विचार करने से संस्कार नहीं बनते है। मन और बुद्धि दोनों मिलकर के जो कर्म करते हैं तो संस्कार होता है, और उसको मिटाने के लिए भी ये दोनों को मिलाना चाहिए। और कोई मेहनत का काम नहीं, आराम से सब बैठो, सवेरे आके बैठते हो, शाम को योग में बैठते हो, दृष्टि इधर उधर कोई गया देखना नहीं, इधर बाबा का इतना बड़ा चित्र रखा है, देखते बैठो, देखते देखते अपने आप से बात करो। पहले बाबा ने कहा आत्मा समझो। अगर ये भाई कौन है मुझे पता नहीं, मैं पूछने के लिए उसको 2-3 प्रश्न पूछेगा ना, भाई जी आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, क्या करते हो, तो मुझे समझ में आएगा ना आप कौन है। तो स्वयं को जानने के लिए कम से कम 4 प्रश्न पूछना चाहिए रोज। जब भी बैठते हो, आके बैठते ही दृष्टि खुली, आके बंद नहीं करना, नींद आ जाएंगी, इधर देखते रहो। इसलिए बाबा का बहुत बड़ा चित्र रखते हैं, देखते ही अपने आप से बात करो मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देंगी। मैं आत्मा हूं नहीं कहना, पूछना मैं कौन, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए, हाँ मैं आत्मा हूं, नहीं तो मैं कौन, मैं तो माताजी हूं, अपने आप मन कहेंगे मैं पिताजी हूं, क्योंकि हम शरीर के भान में रहते हैं, हर सेकंड शरीर में रहते हैं, तो वहां बुद्धि के अंदर समझ है, हाँ मैं आत्मा हूं। ये अगर आवाज आया तो आपकी एक अंगुली जुट गई। दूसरा, अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप कैसा है? तुरंत बुद्धि जवाब देती, मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। देखने जाना नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देगा, अंदर है। नहीं तो कहा भ्रकुटी में आत्मा कहां है, दिखाई नहीं देती, ऐसे करेंगे, देखना नहीं, ठीक है। तीसरा, मेरे गुण कौन से है? कभी कभी गुस्सा करना मेरा गुण है, वो कहां से आता है गुस्सा? वो सूरत में मिलता है मार्केट में, तो कहां से लाया भाई जी गुस्सा, कहां से लाया? मिलता है कहीं? मिलता है तो हमको भी थोड़ा दे दो। शरीर के पांच गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये शरीर है, शरीर आपके साथ ही है। ये शरीर के गुण, शरीर के गुण को यूज नहीं करना। तब का बैठती अपने आप से पूछो, मैं कौन, मेरा रूप, फिर मेरे सात गुण है, एक एक गुणों को याद करो। ये मेरा गुण है, ये मेरा गुण है, ये मेरा गुण, सात गुण पता है, पता है ना, एक एक गुणों को याद करना। चौथा, मेरे कर्म क्या है? मैं आत्मा, इस आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, योग में बैठे हुए इधर उधर देखना चाहिए, मुख से बोलना चाहिए, कोई काम नहीं शरीर का। तब बाबा ने कहा अशरीरी बनो। ये चार प्रश्नों का जवाब दिया तो आप अशरीरी बन गए, विदेही बन गए, आत्म अभिमानी बन गए। अगर इसके बीच में दूसरे कोई विचार आया, आएगा नहीं, दो ही रास्ते है, यह मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, तो दूसरा विचार कहां से आएगा? कोई जगह नहीं। और पहले क्या होता था, बुद्धि खाली रहती थी, इसलिए बुद्धि के अंदर पुरानी कोई बात याद आती थी। अब आपने प्रश्न किया, मन ने प्रश्न किया, बुद्धि बात, दोनों बात करने लगे, तो दोनों बिजी हो गया। तो बात करते करते निकलो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, फिर मेरे कर्म। मैं शरीर से कर्म करता हूं, अभी शरीर का कोई काम नहीं, तो क्यों बैठा हूं यहां? शुभ बाबा को याद करने के लिए। तो शुभ बाबा कौन? अब बाबा से बात करो, तो शुभ बाबा कौन? अब बाबा को कहते हैं सर्वशक्तिवान, आज बाबा ने कहा, तो बाबा की सर्वशक्ति कौन सी है? वो बताओ, कौन बताएगा आपको? पता नहीं, इस मार्केट में जाओ तो हीरा मिलता है, इस मार्केट में जाओ कपड़े मिलते हैं, कपड़े मार्केट में जाके सब्जी मांगो तो मिलेगा, तो शिव बाबा के मार्केट में क्या मिलता है? सर्वशक्तियां, कौन सी शक्ति है वो? माता जी बताओ, सुख की, बाबा को, बाबा के साथ सुख मिलता है, शांति मिलती है, और पवित्रता, प्रेम मिलता है, और स्नेह मिलता है, और ज्ञान मिलता है, और गुण भी मिलता है। गुणवान कह रहे शिव बाबा को, सर्वशक्तिवान का, सर्व गुणवान नहीं, और बताओ। हाँ, तो जानना चाहिए आपके पिताजी के पास क्या है। तो बाबा के पास मुख्य आठ शक्तियां है, हाँ है ना, अष्ट शक्तियां है मुख्य। तो योग में बैठ के बाबा से क्या करना है? बाबा ने कहा बच्चे बाप समान बनो। हमारे पिताजी क्या करता है, मैं क्या करता हूं, कंपेयर करो, है ना। योग में बाबा के पास आठ शक्ति याद होना चाहिए। शिव बाबा पवित्रता का सागर, सदा पवित्र है। शांति का सागर, शांति धाम में रहता है। शिव बाबा आनंद का सागर, भरपूर आनंद, आनंद का सागर। शिव बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान सुनाता है। शिव बाबा कौन, दुख हरता सुख करता है। शिव बाबा कौन, मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। शिव बाबा कौन, भाग्य विधाता है, हे भाग्य विधाता। और शिव बाबा दिव्य बुद्धि दाता है। तो योग में बैठकर पहले अपने आप से पूछा, मैं कौन, मेरा रूप, फिर मैं कहां से आया, परम धाम से आया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई एमर्ज नहीं करना, बाबा जो है जैसे आएगा, है ना। तो एमर्ज करना मत, चित्र एमर्ज किया आपने, कोई एमर्ज नहीं चाहिए। बैठ करके इधर देखते रहो और बात, आवाज देखो। अगर आप यहां से अमेरिका में फोन करना है तो आपको अमेरिका वाला दिखाई देगा, आवाज कैसे जाता है वहां? हाँ, पांच नंबर घुमाना पड़ेगा, दस नंबर घुमाएगा तो आवाज जाएगा ना। यहां भी अगर शुभ बाबा तक आपका आवाज जाना चाहिए तो कौन से नंबर घुमाएंगे, कौन से नंबर घुमाएंगे? अब भी बताया पांच नंबर, भूल गए। हाँ, वो जीरो पुराना नंबर है, वो लैंडलाइन नंबर था, अभी जीरो नहीं चलेगा, अभी मोबाइल आ गया, मोबाइल के नंबर है। पांच नंबर बताया था, कौन से नंबर हो? हाँ, एक मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म और मैं कहाँ से, ये पांच नंबर घुमाते हो तो आपका आवाज वहां जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, आत्मा का आवाज जाता है, आत्म अभिमानी बनी। अब बाबा कौन, बाबा पवित्रता का सागर, बाबा आपका मैं बच्चा हूं, मुझे आपके जैसे बनना है, आप कैसे पवित्र हो ऐसे मुझे बनना है, मैं आपका बच्चा हूं। दूसरा ले लो, शिव बाबा आप शांति के सागर हो, कभी गुस्सा नहीं करते हो, बाबा आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी होने दो, मैं आपका बच्चा हूं, आपके श्रीमत पर चलूंगा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा। फिर तीसरा ले लो, शिव बाबा ज्ञान सुनाता है, बाबा आप जो हमको ज्ञान सुनाते हो वो मैं औरों को जरूर ज्ञान सुनाऊंगा। फिर बाबा क्या करता है, सबको सुख देता है, बाबा आज के बाद मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, क्यों, मैं आपका बच्चा हूं। ऐसे बाबा से बात करो, एक एक शक्ति ले लो, मेरा पिताजी क्या करता है, ऐसे नहीं मांगो नहीं बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति दे दो, अरे बच्चे मांगते हो, नहीं मांगना नहीं, आदत बनी भक्ति मार्ग में, भगवान शिव बाबा मुझे थोड़ी शक्ति दे दो, हाँ मांगना नहीं, बच्चे हमारा बाप क्या करता है और मैं क्या करता हूं, कंपेयर कर, बाप को देखकर कंपेयर करो, समझ में आया। आठ शक्ति याद रखना, इसको बाबा ने क्या, आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करना है, हमारे पिताजी क्या करता है याद करो, वो क्या कर रहा है, उसने मुझे आज क्या करने के लिए कहा था, बुद्धि में याद आना चाहिए, चलते फिरते याद आना, आज बाबा ने कहा था बच्चे ये काम करो, मार्केट में गए माताजी ने घर में ये लेके आओ था, भूल ही गया तो कहेंगे अरे क्या है बुद्धू कहेंगे ना, हाँ माताजी ने कहा मार्केट से आते समय ये लेके आना, तो याद ही नहीं, तो बाबा ने आज आपको सवेरे क्या काम दिया था, हाँ है ना, तो बाबा ने याद कर, बच्चे सर्व शक्तियों को यूज करो, कौन सी शक्ति है वो, हाँ तो बाबा ने अगर किसी ने कुछ गलत शब्द बोला कुछ किया तो सहन करो, है ना, सामना नहीं करो, क्यों क्या बोलने जाना नहीं, सहन करो, शक्ति को यूज करो का, क्यों सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो, समझ में आया, योग में बैठते हो ये शक्तियां भरो, अगर ऐसे करते हो आप रोज एक महीना कम से कम रोज करो, सवेरे आधा घंटा शाम को आधा घंटा, देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं वो धीरे 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 मिटते जाएंगे, हाँ क्यों शक्ति चाहिए, शक्ति के बिगैर ऐसे बात करते रहो, बाबा से बात करते हो भक्ति वाला हो गया, मूर्ति के सामने जाके बैठो, हाँ और बात करते रहो, बाबा आप बहुत अच्छे हो, आप प्यार के सागर हो, आप आनंद के सागर, बाबा को पता है मैं प्यार का सागर हूँ, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बाबा जैसे आप प्यार करते हो ऐसे मैं भी सबको प्यार करूंगा, वादा करना है, हाँ बाबा को याद दिलाना नहीं, बाबा आप वो भक्ति वाला हो गया, याद करना, महिमा करना, है ना, तो महिमा नहीं, हमारा बाप क्या करता है ऐसे मुझे करना है, ये अगर आप रोज आधा घंटा बैठ के तपस्या करते हो तब देखना कोई आ रहा है, कोई आवाज हो रहा, आप स्थिर एक रस, न इधर उधर के कोई विचार नहीं भी आएंगे, क्यों कि मन प्रश्न करता है बुद्धि जवाब देती है, खाली बुद्धि रहती है तो जरूर पुरानी बातें याद आती है ना, तो इसके लिए बाबा कहता है एक रस अवश्य, ये है तपस्या, चलते फिरते किसी को योगदान देना ये है याद, चलते फिरते याद करो, चलते फिरते खाली बैठे हो ट्रेन में गाड़ी में, आज मुझे बाबा ने क्या कहा था मुरली में, मुरली के पॉइंट याद आया, ट्रैफिक कंट्रोल बज गया तो क्या करते हो, गीत सुनते हो, है ना, ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करते हो, गीत सुनते हैं, हाँ तो उस समय सुनना चाहे कभी भी सुनो, तो उस समय याद करो कि बाबा ने मुझे आज सवेरे क्या सुनाया था, हाँ बाबा ने मुरली में मुझे ये काम करने के लिए कहा था, जो कर्म करते हो उसका विचार नहीं करो, जो बाबा ने ज्ञान सुना वो हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, हर घंटे में अपने आप को मुरली के पॉइंट याद करो, देखो मन कितना फ्रेश हो जाता है, हाँ बाबा कहता है औरों को सुख दे दो, कैसे देंगे आप, मुरली जो सुनी औरों को मुरली के पॉइंट सुनाते हो तो उनका चेहरा देखो खुश हो जाता है, आपको भी देखो खुशी, ऐसे खुशी दे नहीं सकते है, ये मुरली के पॉइंट सुनाना ज्ञान दान करने से खुशी दान करना है, समझ में आया, तीन चीजें हो गया, एक मुरली के पॉइंट सदा जेब में होना चाहिए, ये धन है इसके बिगैर घर से बाहर जाना नहीं, एक मुरली के पॉइंट लिख के रखना, कल सवेरे निकाल दो दूसरा डाल देना, वही पॉइंट दूसरे दिन नहीं, रोज नए नए पॉइंट ले लो, देखो मुरली सुनते समय भी आपका पूरा ध्यान रहेगा मुरली पर, क्योंकि नया पॉइंट्स लेना है, पुराना नहीं, क्या आज सुना हुआ कल नहीं, नए क्या सुनाता है बाबा वो लेना है। दूसरा, चलते फिरते रास्ते पर कोई भी मिला, ये मंत्र पक्का करो, देखते मेरे मन में क्या विचार आया, तब कहते अरे आज इनको देखा सवेरे उठते ही मेरा दिन ही सफल हो गया। ये दाता का चेहरा देखना चाहिए, देने वाले का चेहरा है ना, तो वो बाबा ने कहा देने वाले बनो, दाता के बच्चे बनो। तो ये एक सुनाया। फिर बैठ करके अपने अंदर भरो कि परिस्थिति आती है संसार में, हमारी अवस्था अचल अडोल रहे, हलचल में नहीं आ जाए, विचलित न हो जाए, तो उसके लिए ताकत चाहिए, अपने आप नहीं होता है। तो कभी बैठ के अपने आप को सिखाओ कि अगर हमारे माताजी ने युगल ने गुस्सा किया तो मुझे क्या करना चाहिए, हमारा बच्चा हमको शरीर छोड़ के चला गया तो मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले से सिखाओ, अगर हमारा दोस्त 1,00,000 रुपया लेके आया वो देता ही नहीं है तो क्या करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, गाली देना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए। बैठ के अपने को पढ़ाओ, जो बाबा ज्ञान सुनाता है अपने को पढ़ाओ, तो कहे पढ़ लिया आपने, समझाया तो बुद्धि अपने आप समय जब आया काम करती है, तो परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे, एक रस अवस्था होंगी। ये तीन काम कर सकते हो कि कठिन है, कर सकते हैं? शाम को योग में बैठेंगे बैठेंगे ऐसे 1 घंटा आधा घंटा, कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, कोई उठ रहा है कोई जा रहा है, तो वो नहीं ना, एक रस, एक बार बैठो, समय देख के बैठना, मुझे आधा घंटा बैठना है, हाँ बीच में जाना है किसी को पीछे बैठो, आप उठते हो चलते हो कितने लोगों को डिस्टर्ब होता है, आप बीच में उठे लेकिन माताजी देखा अरे उठ गई, देखा उसको डिस्टर्ब हो गया, हमारे कारण औरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये भी दुख देना है। अगर आपको नींद आ रही है, नींद करे तो आपके वाइब्रेशन औरों को पहुंचे, उनको भी नींद आती है, आप योग में बैठे इधर देखते हो उधर देखते हो, वो भी कहेंगे अरे कौन आया क्यों देख रहा है, उसका भी अटेंशन डाइवर्ट करा है आपने। इसको कहा दैवी मैनर्स है, ये समझ में आया? तो ये सब चाहिए, ये बाबा के बच्चों के अंदर नहीं होंगे और किसमें आऊंगा, होंगे ना, अभी तो शिविर वाले तो नहीं, नए तो नहीं, बाबा के बच्चे हो, कल स्वर्ग में जाना है तो यहां से तैयारी करेंगे ना। तो ये 2-3 काम करना, एक योग में बैठते हो कहीं भी बैठो, शाम को और सवेरे आधा घंटा एक स्थिर में बैठना है। इन्हों ने बैठो जाओ, वो भक्ति वाले आए बैठे चले गए, वो यात्रा करने वाले, भवरा क्या करता है घूम घूम के चला जाता है, यात्रा करने चारों धाम की यात्रा गया फिर भी खाली रह गए, ऐसे नहीं, भक्ति वाले मार्ग काम नहीं करना, ठीक है? कहां भी बैठो, शांति स्तंभ है, बाबा के झोपड़े इधर हॉल में बैठो, यहां भी बैठो, हाँ बाबा के कमरे में बैठना नहीं ज्यादा, तो छोटा जगह है, औरों को चांस मिलना चाहिए, तो वहां बैठो, बाबा का दर्शन करो, बाबा को कुछ अपने मन की बात बताओ और आ जाओ। हर जगह पर अलग अलग अगर टाइम नहीं है, नहीं तो झोपड़ी में बैठते हो को क्या करना चाहिए, बाबा के कमरे में बैठते हो तो क्या तपस्या करना चाहिए, शांति स्तंभ में बैठते हो तो क्या करना चाहिए, छोटे हॉल में बैठते हो, बाबा वहां बैठ करके तपस्या करता था, बाबा ने वहां बैठ के मुरली सुनाई है, वहां बैठ के क्या करना चाहिए, तो उनकी भी अलग अलग है। लेकिन अभी इतना 3 किया तो बस ज्यादा खाएंगे तो फिर अगले साल के लिए रखेंगे ना, क्रोध मुक्त होकर माता जी आएंगे तो अगले साल के लिए थोड़ा रखना चाहिए ना, हाँ अगले साल भी आएंगे ना, हाँ तो ये 3 काम करना चाहिए, मंजूर हो गया? इससे क्रोध चला जाएगा सूरत से कि रहेगा? हाँ वरा सचे तो क्रोध चला जाना चाहिए पक्का, अभी जाते समय बाबा को चिट्ठी लिख के दे के जाना, भंडारे में डालना कि बाबा क्रोध यहां ही छोड़ के जाते हैं, देना वापस भेजना नहीं उसको, आप रख लो आप संभालो, ठीक है बाबा को भी कुछ देंगे ना, तो क्रोध छोड़ के जाइए। क्रोध एक बाबा ने कहा बच्चे एक को त्याग करो आप, बाकी 4 मैं ले लूंगा, इसमें कोई तकलीफ है नहीं? अगले शाम आएंगे तो सभी हाथ उठाएंगे ना, तभी बहन जी सबको लेके आएंगे, नहीं तो फिर क्या फायदा, परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या फायदा। हाँ पीछे वाली बता, जो समझते हो कि हम मधुबन में इस भट्टी का दक्षिणा बाबा को देके जाएंगे क्रोध, वो हाथ उठाओ देख लो, बहन जी देख लो करो कौन है पक्का, हाँ गुड, क्योंकि बाबा ने आज कहा था पोता मेल टीचर लिख के भेजेंगी, है ना, नंबर 1 टीचर कौन, वो बाबा ने जो पोता मेल बताया कि बाबा आपके बच्चे बहुत अच्छे क्रोध मुक्त हो गए हैं, तो बाबा फिर वराचा को इनाम देगा ना, बाबा ने कहा था कि बाप इनाम देगा। निर्विघन बनो, अवस्था और सेंटर, निर्विघन बनेगा बाबा इनाम देगा। इनाम चाहिए? हाँ, तो इनाम देगा तो उससे पहले क्रोध मुक्त हो जाओ। जहां क्रोध नहीं है तो विघन भी नहीं है। किसी ने कुछ भी बोला, कोई बोला, हाँ बोलने दो, कोई अर्जन नहीं। समझ में आया? ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी ने इतना जो गहरा विषय था, लेकिन फिर भी बहुत ही हल्के रूप से, खुशी खुशी से हम सभी को इस विषय की गहराई में ले गए और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई कि हमारी स्थिति समर्थ कैसे बनी रहे। और अगले साल हम सभी को फिर भट्टी करने आना ही है ना सभी को। तो अभी तो हमने सभी ने पक्का ही कर लिया है कि क्रोध मुक्त जरूर बनना है। उसकी विधि भी बहुत अच्छी बताई और खास एक विधि हम सभी को धारण करनी है, मुरली की पॉइंट को हम कैसे अपने जीवन में लाए, उसकी बहुत अच्छी विधि बताई। तो आज हम सभी संकल्प करेंगे कि जरूर इस विधि को, मुरली की जो पॉइंट है, अपने पास रखेंगे, बार बार उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको चिंतन में लाएंगे तो जरूर हमारी स्थिति समर्थ बन जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी, हमारी स्थिति भी समर्थ बन जाए, उनके चेहरे से ही लगता है जो उन्होंने सुनाया, सचमुच उन्होंने की स्थिति तो समर्थ ही है। हम भी अपनी स्थिति ऐसी समर्थ बनाए तो चलो हम सभी बहुत पावरफुल दृष्टि से बाबा को लेकर याद करेंगे।